الحمد لله وكفى، الحمد لله وكفى، سلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، कल की मजलिस में मशाइख के बताए हुए चार मुजाहिदात में से आखिरी पे गुफ्तगू हो रही थी। वो चार मुजाहिदात किल्लत ताम खाने पीने में कमी, किल्लत कलाम बोल चाल में कमी, किल्लत मनाम नींद को मुतवाजन करना, और चौथी गुफ्तगु और चौथा मुजाहिदा किल्लत इख्तिलात माल अनाम लोगों से मेल जोल में कमी। लोगों से मेल जोल में कमी के बारे में कल बताया गया कि ये मेल जोल में कमी इसलिए मशायख फरमाते हैं कि जी ज्यादा वक्त जो है वो गफलत में नहीं बल्कि अल्लाह की याद में गुजरे। तो मेल जोल में कमी करने का मतलब ये नहीं है कि जी अकेले अब रह गए, लोगों से मुलाकात खत्म, तो अब बैठ के गुनाह कर रहे हैं, बल्कि मेल जोल में कमी अल्लाह की याद के लिए है। तो जो शख्स मेल जोल में कमी लाता है, लोगों से मिलना मिलाना छोड़ता है और बैठ के कंप्यूटर पे बैठ जाता है या अपने फोन पे लग जाता है, उसने मेल जोल में कमी नहीं की है, वो अभी भी लोगों में ही घिरा हुआ है। कि आज के जमाने में फोन पे बैठना ऐसे ही है जैसे लोगों के साथ बैठना। इस वक्त भी तो हम फोन पे आपस में एक दूसरे से गुफ्तगू कर रहे हैं ना, तो ये वक्त को भी हम ये नहीं कहेंगे कि ये इख्तिलात का वक्त है, ये लोगों के साथ गुजरा हुआ वक्त है। तो मशायख ने ये जो इख्तिलात में कमी लाने का फरमाया, लोगों के साथ मेल जोल में कमी, इसका मकसद अल्लाह की याद को बढ़ाना है। मेल जोल में कमी ये इंसान को कई मरतबा बहुत ही वहशत ज़दा करती है, खास तौर पे ऐसे शख्स के लिए जो हर वक्त लोगों में घिरा होता है ना, हर वक्त पार्टी चल रही है, कभी घर में चल रही है तो कभी दोस्तों में चल रही है, तो कभी यहां तो कभी वहां। उसको मशायख जब ये कहते हैं कि जी अब आपने चंद घंटे के लिए बस किसी से मिलना नहीं और बैठ के तस्बीह करनी है या बैठ के मुराकबा करना है, उस पे बड़ा गरा गुजरता है कि जी अकेले कैसे मैं वक्त गुजारूंगा। और खास तौर पे ख्वातीन के लिए बड़ा मुश्किल होता है कि जिनको आदत है घर के अंदर लोगों के साथ होने का, तो कई मरतबा हमारे रिश्तेदार या भांजियां भतीजियां शादी होके मुल्क से बाहर गईं, अब वो पूरा दिन जो अकेला रहना है कि शौहर बाहर जो है वो जॉब पे है, तो वो अकेलापन जो है वो ऐसा वहशतनाक के फोन करके अपनी वालदा को तो रिश्तेदारों को बताना कि ये एक तकलीफ दे अमर है। तो लोगों से हट कट के रहना आम इंसानों के लिए कोई आसान काम नहीं, बड़ा मुश्किल काम है। तो ये जो हट कट के रहने की जो तलकीन की जा रही है, ये इसलिए कि इंसान यकसू होके अल्लाह की याद करे। तो जैसे जिक्र और मामूलात शुरू में तबीयत जो है वो बनती नहीं है, फिर बाद में तबीयत लग जाती है, ये इख्तिलात भी शुरू में तबीयत लगती नहीं है कि मैं लोगों से हटकट के बैठूं, मगर कुछ अरसे बाद तबीयत इख्तिलात में लग जाती है। तो इख्तिलात माल अनाम, लोगों से हट कट के रहना जो है ये शुरू में दवा की तरह है, कि जैसे दवा इंसान को अच्छी नहीं लगती मगर उसके लिए होती फायदेमंद है इंसान के लिए, तो लोगों से हट कट के रहना ये शुरू में दवा की तरह, और फिर एक वक्त आता है जब उसको आदत हो जाती है तो ये लोगों से हट कट के रहना उसके लिए गिजा की तरह बन जाता है। अब लोगों में वो दीन की वजह से भी रह रहा है, फिर भी उसका दिल हटने कटने ही का है। इसीलिए नबी अलैहि सल्लातु वसलाम ने फरमाया, ली माअल्लाही वक्तुन, कि मेरा अल्लाह के साथ एक अलग वक्त भी है, कि आपको उस वक्त की बहुत रग़बत थी, क्योंकि पूरा दिन दीन की दावत देना, सहाबा कराम को तरगीब देना, जिहाद का मामला, घर के मामलात, आपके अजवाज मुताहरात, दीनी काम, बहुत सारी वही जो है उसको लिखवाना, और ये बहुत सारे काम, और हर काम में लोगों के साथ ही इख्तिलात, और सारे काम दीनी, इसके बावजूद शौक ही कि मेरी मुलाकात अल्लाह से हो जाए। तो ये जो वक्त अल्लाह के साथ गुजर जाए ये उनके लिए गिजा की, तो लोगों से हट कट के रहना ये पहले बड़ा मुश्किल लगेगा कि ये क्या, कि किसी से भी मैं बातचीत ना करूं, वहशत लगेगी उसे, मगर बाद में ये गिजा की बात। चुनाचे हजरत मौलाना इलियास रहमतुल्लाह अलैह बानी तबलीगी जमात फरमाते हैं कि तबलीगी जब इज्तमा होता तो ये 3 दिन लोगों से मेल मुलाकात, सुबह शाम सारा वक्त लोगों से मेल मुलाकात, 3 दिन में गुजर गए। तबलीगी इज्तमा बयान भी हो रहा है, हजारों लाखों लोगों को तबलीग में निकलने के लिए तरगीब दी जा रही है, बहुत बड़ा दीनी काम होता है तबलीगी इज्तमा, मगर फरमाते हैं कि इस 3 दिन लोगों के साथ सुबह शाम रहने से, इतने हजारों लोगों से मुलाकात करने के बाद तबीयत ये चाहती थी कि अल्लाह के साथ अलग वक्त गुजरे। तो हर साल तबलीगी इज्तमा गुजारने के बाद मामूल हजरत का ये होता कि अपने शेख की खानकाह पे जाते, रायपुर में हजरत के शेख थे, तो रायवंड का इज्तमा मुकम्मल होता या निजामुद्दीन का इज्तमा मुकम्मल होता तो हजरत फिर वहां से रायपुर तशरीफ ले जाते, और खानकाह पे कई दिन सिर्फ जिक्रुल्लाह में गुजारते। इसका मतलब ये है कि ये जो इख्तिलात है ना, लोगों से हट कट के सिर्फ अल्लाह से जुड़ना, ये उनके लिए अब गिजा बन चुका है। वरना आम बंदा तो ये कहेगा कि अभी 3-4 दिन तो दीन के काम में लगा के आया हूं, इतना बड़ा इज्तमा अटेंड करके आया हूं, अब वहां से फिर खानकाह पे जाने की क्या जरूरत है। वो इसलिए जरूरत कि असल दिल का शौक जो है वो अल्लाह के साथ अकेले में वक्त गुजारने का। तो इसलिए मशाइख ने कहा कि जी इख्तिलात माल, लोगों के साथ थोड़ा मेल जोल कम करें, अल्लाह के साथ मेल जोल बढ़े, तो असल रग़बत जो है वो अल्लाह के साथ वक्त गुजारने की पैदा हो जाए। तो शुरू में ये मुश्किल काम, बाद में ये गिजा की तरह इंसान की तबीयत जो है वो इसी तरफ राग़िब होती है। इंसान की तबीयत यही चाहती है कि लोगों में ना घिरा हुआ हूं बल्कि अल्लाह के साथ मेरा वक्त, मगर लोगों में जो वक्त अब गुजरता है चाहे वो ज्यादा ही क्यों ना गुजरता हो, ये इन मशाइख के लिए अल्लाह के लिए है। تو جب سلوک شروع کیا تو لوگوں میں جو وقت گزر رہا ہے وہ اللہ کے لیے نہیں ہے، وہ اپنی خواہش کی وجہ سے. اب جب اللہ کے ساتھ وقت گزارنے کا شوق پیدا ہو گیا تو اب لوگوں میں جو وقت گزار رہے ہیں وہ اللہ کے لیے گزر رہا ہے. اسی لیے حضرت مجدد ثانی رحمۃ اللہ علیہ نے سیور اربع بیان کی. سالک جو سلوک طے کرتا ہے اس کے چار سہرے ہیں، یوں سمجھ لیں چار سیکشنز ہیں. شروع میں وہ لوگوں کو چھوڑتا ہے اور اللہ کی طرف آگے بڑھتا ہے، پھر جب بالکل اللہ سے جڑ جاتا ہے تو پھر وہ واپس مخلوق میں آتا ہے، مگر وہ مخلوق میں ہوتا تو ہے مگر اللہ سے جڑا ہوا ہوتا ہے. تو لوگوں سے کاٹنا مشائق کا مقصد یہ نہیں ہوتا ہے کہ بس اب لوگوں سے کوئی تعلق نہ ہو، بلکہ مشائق لوگوں سے جو میل جول کم کرنے کا فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ اللہ سے تعلق مضبوط ہو جائے تاکہ پھر انسان لوگوں سے بھی تعلق رکھے تو اس میں اللہ کی وجہ سے تعلق رکھے. تو بڑی زبردست چیز ہے یہ لوگوں سے ہٹ کٹ کے اللہ کے ساتھ تعلق رغبت بڑھانا. اور اسی لیے مشائخ فرماتے ہیں کہ جی شیخ کے ساتھ بھی مراقبہ کریں مگر اکیلے بیٹھ کے بھی، ہر چیز سے ہٹ کٹ کے صرف اللہ اور بندہ ہو ایسے بھی اللہ کو بیٹھ کے یاد کریں. اللہ تعالی ہمیں اپنی یاد نصیب فرمائے اور اللہ کے ساتھ اکیلے بیٹھ کے اللہ کو یاد کرنے کے اللہ ہمیں بھی مزے نصیب فرمائے. آخر دعوانا ان الحمدللہ، دعا کر لیجیے. الحمدللہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اللہم انا نسألک علما نافعا وعملا متقبلا ولسانا طاہرا وقلبا خاشعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء. وصلى الله تعالى على حبيبه سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.